رمضان میں, اور رمضان کے بعد مثلا انہوں نے ایسی غذائیں کھائی ہیں, اپنے آپ کو ایسا وہ کیا, بعد میں بالکل فٹ ہو گئے. تو اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی ان بوڑھے افراد کو بھی, یعنی جو اس وقت نہیں رکھ سکتے تھے لیکن بعد میں ان میں اتنی صحت یا جسمانی اتنی قوت آ گئی کہ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں بعد میں رمضان گزرنے کے, تو ان پر احتیاط واجب کی بنا پر ان روزوں کی قضا پھر آ جائے گی. لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہوتی کوئی, تو وہی دو کیٹیگریز بوڑھوں کی بنیں گی, جو مشقت کے ساتھ رکھ سکتا ہے اس پر سے معاف تو ہے, البتہ فدیہ دینا پڑتا ہے, جو رکھ ہی نہیں سکتا اس پر سے اس کی کوئی قضا بھی نہیں اور نہ کوئی فدیہ. اور بعد رمضان اگر اتنی طاقت ان بوڑھے افراد میں پیدا ہو جائے تو احتیاط واجب ہے کہ ان کو دوبارہ رکھے. اچھا, ابھی ایک مسئلہ ایک آیا تھا کہ جو کفارہ تاخیر وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں, کیا اس میں, یا جو اور کفارے بھی, کہ اس میں آٹا ہی دینا ضروری ہے, یہ چاول دالیں وغیرہ بھی دے سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ جی ہاں دے سکتے ہیں, لیکن کیا ہے اور گروسریز نہیں دلوا سکتے, ٹوتھ پیسٹ دلوا رہے ہیں اور صابن دلوا رہے ہیں, یا مہینے کا جو خرچہ ہے جس میں اور چیزیں شامل ہو جاتی ہیں وہ دلوا رہے ہیں, نہیں, یا واشنگ پاؤڈر دلوا رہے ہیں مثلا, یہ نہیں کہ ہم نے مہینے کے ایک خرچہ ایک پورا جو عام طور پر ایک پیک بنتا ہے ہم نے وہ چیزیں اس کو دلوا دی اتنے پیسوں میں, نہیں, یہ نہیں چلے گا. یعنی اس کو صرف وہی چیزیں, کوشش یہی کریں کہ یہی آٹا چاول اور دالوں کی حد تک معاملہ رہے. اچھا, پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے, اب اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا, الگ سے کسی کو اگر یہ کام کروانا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا روٹی کو بطور کفارہ دیا جا سکتا ہے, یعنی روٹی پکوا کر ہم بطور کفارہ جو ہے وہ دے دیں؟ تو علماء فرماتے کہ جی ہاں اس کی بھی اجازت ہے, روٹی کو بھی بطور کفارہ دیا جا سکتا. اچھا, اب بہت سارے افراد ہیں کہ جنہوں نے پچھلی زندگی میں خوب کھاتے پیتے رہے اور روزے بہت قضا کی اور اتنی زیادہ دن گزر گئے, 30-40 سال اسی طرح سے گزارتے ہوئے, کبھی کچھ روزے رکھے کبھی نہیں رکھے, کبھی روزے رکھے کبھی نہیں رکھے, یہ آخر اپنے پچھلے قضا روزوں کا حساب کیسے کریں گے, یہ اپنے پچھلے قضا روزوں کا حساب کیسے کریں گے؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ کم سے کم روزوں کا حساب کریں, کہ کم سے کم اتنے جس پہ ان کے دلی اطمینان ہو جائے کہ کم سے کم اتنے تو مجھ پر واجب ہوں گے ہی, اتنے تو میں نے قضا کیے ہی کیے ہوں گے. ایک ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ فگر کہ نہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے مثلا 300 روزے قضا کیے, زیادہ سے زیادہ اتنے, لیکن کم سے کم 200 تو کیے ہی کیے, تو اب اس پر واجب ہو جائے گا کہ ان 200 روزوں کی قضا کرے, اور کفارے الگ ہوں گے, وہ تو ظاہر الگ سے ایک پینلٹی دینا پڑتی ہے. تو یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں کہ جب یہ ساری زندگی کس طرح سے چڑھتے جاتے ہیں, جب انسان حساب کتاب کرنا شروع کرتا ہے تو واقعی پھر وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. تو کیسے حساب کریں؟ دیانتداری کے ساتھ, اپنے اور خدا کے درمیان آپ کے معاملہ ہے, اب آپ پوری دیانتداری سے اس بات کو کیلکولیٹ کریں کہ کتنے آپ جو ہے آپ پر روزے چھوٹے ہوں گے, کتنے کم سے کم, تو کم سے کم روزوں کا شریعت نے کہ جس پہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اتنے تو روزے میں نے نہیں رکھے ہیں, یہ تو مجھے اطمینان, تو بس اتنے روزوں کی آپ کو قضا کرنی ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ روزوں کی طرف نہیں جانا. تو یعنی زیادہ والی فکر کو آپ کو چھوڑ دینے کا اسلام نے بہرحال ایک سہولت دی ہے, لیکن کم سے کم اتنے روزے تو رکھنے پڑیں گے. اچھا, پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی مومن کوئی دعوت دے, تو آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ مستحبی روزہ توڑا جا سکتا ہے, بلکہ مستحب ہے کہ مومن اگر خوش ہو رہا ہو آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے, وہ آپ کا روزہ کھلوانا چاہ رہا ہے, بہت سے افراد ریزسٹ کرتے ہیں ذرا کہ نہیں ہمیں روزہ مکمل ہی کرنے دو, جبکہ زیادہ ثواب مومن کی دعوت پر افطار کرنے کا, بلکہ اس میں کئی ثواب ملتے ہیں, تو اس میں ایک ثواب وہ بھی ہوتا ہے کہ مومن کے دل کو خوش کرنے کا بھی اس کو ثواب مل جاتا ہے. روزے کو پورا کرنے میں ثواب کم ہے, اور سمجھے مومن کی دعوت پر مستحب روزے کے افطار کرنے میں ثواب زیادہ ہے. اچھا, کیا یہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا ہم افطار کرانے میں ہم مثلا کوئی سگریٹ پینے والا دوست ہے, ہم نے سگریٹ سو لگائی اس کو دے دی کہ لو میری طرف سے افطار, یا ہم نے ایک شاہی سپاری جو نکالی اس کو مثلا دے دی کہ لو اس سے افطار کرو؟ تو علماء یہاں پر یہ بات بیان فرماتے ہیں, بہت سے استفتاءات کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ فقط صرف اتنے سے اتنی ایسی چیز سے افطار کرانا یہ معتبر نہیں ہے روزہ توڑنے کے لیے, کھانے کی دعوت ہونا یہ معتبر, खाने की दावत, यानी मस्कुरा चीजें काफी नहीं है, जिस तरह की छोटी सिर्फ एक गिलास पानी का दे दिया, एक खजूर लाके पकड़ा दी, या मसलन जैसे मैंने कहा सिगरेट पकड़ा दी उसको लाके, एक टॉफी दे दी मसलन कि लो इससे इफ्तार करो, उसके बाद हम चलते बने कि हमें तो सवाब मिल गया, यानी खाने की दावत होना चाहिए। तो बहरहाल ये दिमाग में रहे कि इस्तफ्तात के अंदर उलामा ने यह बात नकल की। अच्छा, अब एक मसला बहुत ज्यादा पेश आ जाता है और वो है बेरोजेदार शख्स को खाना देने का मसला। घर में, घरों में बहुत सारे अफराद इस तरह के होते हैं कि जो रोजे नहीं रख रहे हैं, नाफरमानी करते हुए रोजे नहीं रख रहे हैं। हां, किसी को उजर शरई है, उजर शरई है, मसलन कोई शख्स बीमार, ये उजर शरई है उसके पास, इसको खाना दिया जा सकता है माह रमजान। मुसाफिर है, हमारे पास दूसरे शहर से आया है कोई रिश्तेदार और 10 रोज से कम का उसका सफर है, 3-4 दिन बाद चला जाएगा, इस पर रोजा नहीं, इसको हम रोजा इसको दे सकते हैं खाना। या मसलन कोई औरत महाना निजासत के आलम में है, उसके पास उजर शरई, उसको भी खाना दिया जा सकता है। तो जो बेरोजेदार लेकिन अशखास हैं उनको खाना देना जायज नहीं। मसलन शौहर है किसी औरत का और वो रोजे नहीं रखता है, वो खाना पका के ट्रे सजा के उसके सामने लेकर आए, ये हराम हो जाएगा जी। और इसी तरह से कोई मसलन मजदूर घर पे आते हैं, काम करते हैं, वो आके कहते हैं जरा बाजी पानी दे दीजिए, रोजा नहीं रखा हुआ उन्होंने, या मसलन घरों में काम करने वाली मासियां होती हैं, रोजे से नहीं है और घर में शाम तक काम कर रही हैं, उनको खाना देने का एक मसला एक आता है। तो इसके अंदर जो असल मसला है उसकी रूह को आप समझें, वो ये है कि अगर इन ऐसे अफराद को खाना देने से हतके माह रमजान शुमार होती, माह रमजान का एहतराम मजरूह होता, तो फिर इनको खाना देना जायज नहीं, इसको बेहुरमती समझा जाएगा इस महीने की। ऐसे अफराद को खाना देने की इजाजत नहीं, खाना देने की इजाजत नहीं। और हां, अलबत्ता बहुत से ऐसे जैसे गैर मुस्लिम ममालिक हैं, बहुत से लोगों ने सवाल भी किया कि भाई हम तो काफिर ममालिक में हैं और मसलन किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं और वहां पर खाना सर्व करना ही हमारी जिम्मेदारी है, तो वहां पर तो जाहिर है कि नॉन मुस्लिम है सारे वो, तो वहां पर क्योंकि इस महीने की हदक और बेहुरमती नहीं समझी जाएगी, तो लिहाजा वहां पर ये काम जायज। लेकिन मुसलमान इलाकों में ऐसे अफराद के लिए जो वैसे हट्टे कट्टे और कोई उजर शरई उनके पास नहीं, उनको खाना देना ये जायज नहीं। खाना देना, इन्होंने कहा कि पानी पिला दीजिए, आपने पानी ले जाके उनको दे दिया, वो पानी पी रहे हैं, नहीं ये जायज नहीं। बल्कि एक मसला तो एक खातून ने आपस इस्तानी से भी पूछा कि मेरा शौहर रोजे नहीं रखता और खाना नहीं दूं तो मारता है, मजबूर करता है, बुरा भला कहता है, बाजों का तलाक की धमकी भी देने लगता है। एक मसला है, बाकायदा इस्तफ्ता पूछा गया, तो मैं क्या करूं? आकाश इस्तानी बहुत, देखिए बहुत सारे शौहर इस तरह के होते हैं कि जनाब वो वैसे बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं लेकिन ये कि रोजा नहीं रख रहे हैं और मारपीट भी रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं, घर का माहौल मुकद्दर खराब किया हुआ है उन्होंने कि भाई तुम्हें इससे क्या, हर आदमी का अपना हर शख्स को अपनी कब्र में जाना है और क्यों नहीं दिया जा रहा है, मुझे जाहिर है कि ब्लैकमेल करते हैं इस तरह से। तो आकाश इस्तानी ने जवाब दिया कि आप खाना तैयार कर सकती हैं उसके लिए, मगर खाना सर्व ना करें, सजा कर ना दे, वो जाके जाए किचन में जाए, खुद ही किचन में से निकाल के पतीली में से खा ले, जब तक कि आपको कोई नुकसान ना हो। हाँ, अगर आपको नुकसान पहुंचने का है तो मुझे तलाक दे रहा है, वो मार पीट रहा है, बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहा है, बहुत यानी आपकी जिंदगी मुशक्कत में आ रही है इस वजह से, तो फिर आप सर्फ भी कर सकती हैं, यानी उसको प्लेट में लाकर भी दे सकती हैं, लेकिन वो बहुत हालत मजबूरी वाला मसला। लेकिन आप सिर्फ इतना कर सकती हैं ऐसे अफराद के लिए, खाना बनाकर रख दें, वो निकालें खुद आके, उनको खाना निकाल किस तरह सर्व किया जाता है बाकायदा, इस तरह से नहीं किया जा सकता। तो ये एक अहम मसला था, आमतौर पर घरों में चीजें पेश भी आ जाती हैं, तो इस वजह से ये बताना जरूरी था। अच्छा, बहुत सारे अफराद आपने देखा होगा कि दुकानदार हजरात या कैशियर हजरात जो होते हैं, वो अक्सर ये होता है कि रकम गिनने के लिए या वर्कों को पलटने के लिए उंगली को जबान से तर करते हैं, उसके बाद फिर नोट गिनते हैं, फिर उंगली जबान तर करते हैं नोट, ताकि सही तरह से गिन सके। तो क्या इस अमल से कोई रोजे पर फर्क पड़ता है, ये भी अक्सर सवाल लोग पूछते हैं, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजा बिल्कुल सही रहता है। अपनी उंगली को जुबान से तर करके फिर इन चीजों में इस्तेमाल करना और बार बार इस तरह से जबान पे उंगली लगाना, इसकी इजाजत है। इसी तरह से बहुत सारे अफराद ये भी पूछते हैं कि क्या रोजेदार जो है खुशबू दार जो है टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकता है, शायद वो एहराम वगैरह से रिलेटेड दिमाग में कोई मसला उनके हो, तो बहरहाल खुशबूदार टूथपेस्ट भी इस्तेमाल हो सकता है हालत रोज़ा में, इसमें कोई ममानियत नहीं है। बस ये कि हलक के अंदर कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए, टूथब्रश अगर कोई शख्स कर रहा है तो इसकी एहतियात उसको करनी पड़ेगी। इसी तरीके से रोज़े की हालत में जो माउथ वॉश वगैरह इस्तेमाल की जाते हैं, मसलन मुंह से बू आ रही है, अगरचे वो खुदा को बड़ी पसंदीदा है, लेकिन बहरहाल ये कि हम उस बू का खात्मा करना चाहते हैं और कोई माउथ वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इसकी इजाज़त है? जवाब है कि जी हाँ, इसकी इजाज़त है, माउथ वॉश इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से कोई जो माउथ फ्रेशनर होते हैं, स्प्रे टाइप की जो होते हैं, वो भी किए जा सकते हैं। एयर फ्रेशनर ना कीजिएगा, वो माउथ फ्रेशनर अलग से भी आते हैं, तो बहरहाल उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, सिवाय इसके कि बस हलक से कोई चीज़ नीचे नहीं उतरनी चाहिए। वो जो आपने पिछली दफ़ा नहीं है, वो भी मसला भी मैंने पिछली दफ़ा बयान नहीं किया था, आइंदा आगे आएगा। तो अगर हलक से कोई चीज़ नीचे नहीं उतर रही है तो आपने देखा कि गरारे की भी इजाज़त मिल रही थी, मुंह में कोई चीज़ डालने की भी इजाज़त है, कुल्ली करने की भी इजाज़त है, माउथ वॉश इस्तेमाल करने की भी इजाज़त है, टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की भी इजाज़त है, कोई भी माउथ फ्रेशनर इस्तेमाल करने की भी इजाज़त है, हर लिहाज से बिल्कुल ठीक है, बस हलक से कोई चीज़ नीचे नहीं जाना चाहिए। फिर एक मसला ये भी आता है ख्वातीन के एतबार से कि देखिए क्या ख्वातीन जो अपने रोज़ों को नाकिस नहीं करना चाहती, ये नहीं चाहती कि भाई हम अपने रोज़ों को कज़ा करें, क्या वो गोलियां खाकर अपनी महाना आदत को रोक सकती हैं ताकि हम इसमें माह मुबारक के में पूरे रोज़े रख लें और बाद में फिर हमें कज़ा ना करना पड़े और अपने पीरियड्स को रोक लें गोलियां खाकर? तो जवाब है कि जी हाँ, इसकी भी इजाज़त है, इसकी इजाज़त है, औरतों को इजाज़त है कि इस तरह से महाना आदत को रोक कर अपने रोज़े को पूरा कर सकती हैं, इसमें कोई हराम पहलू या इस तरह का कोई पहलू वो नहीं आता। अच्छा, फिर एक मसला एक ये भी है कि देखिए ये बात याद रख लीजिए कि मुसाफिर सफर में ना ये रमजान का कोई रोजा रख सकता है, ना कोई अदा रोजा रख सकता है, ना कोई कजा रोजा रख सकता है, ना कोई मुस्तहबी रोजा रख सकता है, ना कोई कफारे का रोजा रख सकता है। मुसाफिर सफर में ख्वाह वो सफर कितना ही आरामदेह क्यों ना हो, उसको इस बात की इजाजत नहीं है कि वो सफर में रोजा रखे, सिवाय एक सूरत में कि मदीने में जो हाजत के रोजे रखे जाते हैं सिर्फ वो अगर किसी के कजा रोजे उस पर बाकी भी हैं तब भी मदीने में हाजत के रोजे रख सकता है। और कुछ उलमा कहते हैं कि नजर करके भी अपने ऊपर रोजों को वाजिब किया जा सकता है, वो अलग एक इख्तलाफ है और जो कि फिलहाल उसमें उसकी तफसील में हम नहीं जा रहे, लेकिन एक दिमाग में ये चीज बहरहाल ये बात दिमाग में रहे के हालत सफर में मुसाफिर ना रमजान का रोजा रख सकता है, ना अदा, ना कजा, ना मुस्तहब, ना कफारे का कोई सा भी रोजा नहीं रख सकता, सिवाय एक दो मुकामात है जो भी मैंने बताए। अच्छा, अगर किसी शख्स के मसलन पांच रोजे ही पिछले साल के कजा बाकी हैं और अगला रमजान शुरू होने में पांच ही दिन रह जाए तो क्या उसको सफर करने की इजाजत है? क्या कुछ बातचीत होने लगी है खाली? यानी अगर किसी शख्स पर कुछ कजा रोजे बाकी हों पिछले साल के, तो आपने सुना था कि उसको अगले साल से पहले पहले रख लेने चाहिए, पांच ही दिन बिलफज रह गए, क्या उसको इस बात की इजाजत है कि पांच दिन रह गए लेकिन इसने अपने सफर करके, सफर में तो आपको पता है रोजे नहीं रखे जा सकते, इस सहूलत से फायदा उठा लिया? तो उलमा ये फरमाते हैं कि जी हाँ, उसके बावजूद भी ये सफर कर सकता है, यानी इस पर सफर करना हराम नहीं कि भाई पांच ही रोजे रह गए थे, तुम अपने सफर को अगले आगे कभी अंजाम देना, रमजान के बाद करना, अभी तो तुम ये पिछले रोजे रखो क्योंकि तुम सफर में रोजा नहीं रख सकते हो, तो अपने वतन में रहते ही रोजे का मुकम्मल करो। उलमा फरमाते नहीं, ये वाजिब नहीं, वो सफर कर सकता है, बस ये है कि उसको कफारा ताखीर देना पड़ेगा, ये उसको ये बात इस बात का उसको ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और बयान हो जाए अभी मुस्तहब रोजे के सिलसिले में, क्योंकि मुतफरिक रोजे बयान कर रहे हैं यार, मुतफरिक मसाइल, क्या मुस्तहब रोजे में मेजबान की इजाजत लेना जरूरी है? तो जवाब है कि जी हां, यह मुस्तहब है कि इंसान अपने मेजबान की इजाजत ले, अगर कोई अगर किसी के यहां मेहमान गया हुआ है तो मेजबान से इजाजत ले कि मैं अगले दिन रोजा रख लूं, वो इजाजत दे दे तो रोजा रख ले, इजाजत ना दे तब भी रख तो सकता है, लेकिन बहरहाल उसकी बात पे अमल करना ज्यादा बेहतर। یعنی مستحب ایک حکم ہے کہ میزبان سے مہمان مستحب روزہ رکھنے کی اجازت دے، لیکن یہ کہ 10 روز سے زیادہ کسی جگہ پہ آ گیا ہے وہ، اور یہاں پر اپنا وطن بھی ہے مثلا، اور کسی بھائی بہن کے گھر رہنے گیا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہ ان سے جا کے اجازت لے رہا ہے، وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں وہ رکھنے کی ضرورت نہیں، تو ہم رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیں. یہ فقط مستحب روزے کی بات ہو رہی ہے، رمضان کے جو واجب روزے ہیں یہ تو اس میں کوئی اجازت ہو وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا. اور ویسے ایک معلومات کے حوالے سے بات عرض کر دوں کہ صوم الوصال ایک روزہ کہلاتا ہے، دو روزے پے در پے اس طرح سے رکھنا کہ درمیان میں کوئی افطار نہ کیا جائے، یہ اس طرح سے روزے رکھنا یہ حرام ہے. صوم الوصال حرام ہے، دو روزوں کو اس طرح سے ملا دینا آپس میں کہ درمیان میں افطار نہ کیا جائے. تو کہیں کسی کتاب وغیرہ میں پڑھیں تو آپ کو یہ ہو کہ صوم الوصال کسے کہا جاتا ہے. اچھا، بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو عمومی زندگی میں روزے رکھتے آ رہے ہیں، روزے رکھتے آ رہے ہیں، روزے رکھتے آ رہے ہیں. اب کیا ان افراد کو اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے کوئی روزے، ہمارے پچھلے کوئی قضا روزہ ہم پہ ہے بھی یا نہیں، تو کیا ذمہ داری یہ کچھ نہ کچھ احتیاطاً روزے پھر بھی رکھ لیں؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، یہ سمجھے کہ میرے ذمہ کوئی بھی قضا روزہ نہیں. قضا روزہ یقینی طور پر اسے پتا ہو کہ کوئی قضا روزہ ہے تو پھر تو نیت کر لے قضا روزے کی، لیکن اگر اس کو یاد نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں میرا کوئی روزہ قضا بھی ہے بھی یا نہیں یا میں نے سب رکھ لی، تو پھر وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر کوئی بھی قضا روزہ نہیں ہے اور وہ مستحبی روزے کی بھی نیت کر سکتا، یعنی اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. جس شخص کو شک ہو کہ پتہ نہیں میرے ذمہ کوئی قضا روزہ باقی بھی ہے یا نہیں. اچھا، اب ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے اور وہ ہے سگریٹ کا مسئلہ. سارے مجتہدین کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر سگریٹ کا پینا یہ حرام ہے اور یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے یہی دھواں جو کثیف دھواں سگریٹ کا یا اس میں سے نکل رہا ہوتا ہے بسوں وغیرہ میں سے، اس کو کوئی جان بوجھ کر اپنے اندر انہیل کر لے تو اس کا بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے احتیاط واجب کی بنا پر. اور کوئی مجتہد ابھی تک ایسا نہیں گزرا کہ جس کی تقلید کرنا صحیح ہو اور وہ سگریٹ کو پینے کو جائز قرار دیتا ہو حالت روزہ. اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی عورت پردہ نہ کرے تو کیا اس کے روزے صحیح شمار ہوتے ہیں؟ یہ بہت سے خواتین سوالات پوچھتی ہیں. تو اگر کوئی عورت بے پردہ بھی ہو یا اس کا پردہ نامکمل ہو تو اسے امر بالمعروف کیا جائے گا، نہی عن المنکر کیا جائے گا، لیکن بہرحال اس کا روزہ صحیح ہے، اس کو بعد رمضان ان روزوں کی کوئی قضا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تم گناہگار تھیں، تمہیں روزے کا ثواب نہیں ملے گا، تم روزے کی روح کو نہیں سمجھیں، لیکن قضا کوئی نہیں کرنی، وہ روزہ صحیح رہے گا. ایک تو یہ مسئلہ ہو. کیا حالت روزہ میں لپسٹک وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ پردے وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہو، نامحرم سے جو اپنی زینتوں کو چھپانے کا جو مسئلہ ہوتا وہ والا مسئلہ نہیں، گھر میں ہیں لگا رہے ہیں، اپنے شوہر کے سامنے لگا رہے ہیں، اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے لگا رہے ہیں، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ میک اپ کر کے اور باہر نامحرموں کے سامنے جانا وہ آپ کے روزے کے ثواب کو ختم کروا دے گا، وہ اپنی جگہ ایک معاملہ ہے، لیکن بہرحال اس سے روزے کے باطل ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے لپسٹک وغیرہ لگانے سے. اچھا، ایک بات اور بیان ہو جائے، پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی کہ وہ خواتین کی جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی اور ان کو ڈاکٹر بعض اوقات منع کرتے ہیں اور ویلڈ ریزن ہوتا کہ نہیں بھائی آپ کے لیے نقصان دہ ہے روزہ رکھنا. ایک تو وہ ہے جو پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا مسئلہ کہ بھائی بہت سی خواتین جو بالکل خیال نہیں کر رہی ہوتی ہیں اور لاپرواہی میں خوب کھا پی بھی رہی ہوتی ہیں اور پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ نہیں بچے کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. تو یہ کہاں سے صحیح نہیں، بالکل صحیح ہے، بلکہ زیادہ اچھے اثرات اس کے اوپر ہوں گے، لیکن بالفرض واقعی کوئی ایسی میڈیکل ریزن ہے کہ ڈاکٹرز بھی منع کر رہے ہیں اور واقعی اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ بچے کے لیے نقصان دہ، تو ایسی عورت، حاملہ عورت کو اس روزے کی قضا بھی کرنا ہے اور اس کو فی روزہ فدیہ بھی دینا پڑے گا، فدیہ بھی دینا، یعنی دونوں چیزیں اس کو کرنا پڑیں گی. اور اس کو اگلے، اور یہ رمضان کے فوراً بعد بھی دے سکتی، اس کو بھی اس بات کی اجازت. جو غلطی میں نے کہا تھا نا فدیے کے سلسلے میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہ جو میں بتا کے ہی نہیں دے رہا ہوں آپ کو کہ کیا غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ الگ اس موضوع پر ایک گفتگو آئے گی، لیکن یہاں اس کی ایک ایکسیپشن ہے. بہت زیادہ بوڑھے افراد میں تھی کہ ان کو فوراً بعد رمضان دے سکتے ہیں وہ، اسی طرح سے حاملہ عورتیں بھی فوراً بعد رمضان وہ فدیہ نکال سکتی ہیں، قضا کرنی ہے اور فدیہ الگ سے دینا. یا اسی طریقے سے البتہ کفارہ وغیرہ کوئی نہیں، صرف قضا جو ہے وہ انجام دینا، हाँ, उसके बाद जो बच्चों को दूध पिलाती हैं और उसकी वजह से वाकई सीरियस मामला ऐसा है कि बच्चे को जो है फीड सही तौर पर नहीं करा सकेंगी, उसकी खुराक बच्चे की कम हो जाएगी, और इसके अलावा कोई और तरीका भी ना हो, बाकायदा आकाश सिस्तानी ने तो अपनी तौजील मसाइल में लफ्ज़ फीडर भी इस्तेमाल किया कि बच्चे को अगर फीडर पिला के उसकी कमी पूरी की जा सकती है गजा की, तब भी इस औरत को रोजा रखना पड़ेगा। हाँ, ऐसे इलाके हैं बहुत से कि ऐसा कोई डिब्बे के दूध का भी इंतजाम नहीं है, कोई और दूध का भी इंतजाम नहीं है, बच्चा भूखा रह रहा है और उसका माँ जो है उसकी गजाइत भी मसलन सही नहीं, और बच्चे का के लिए दूध और खुराक कम होती चली जा रही है, तो फिर ऐसी औरत के लिए के ऊपर से रोजा माफ हो जाता है ऐसी कंडीशन में, और ये चाहे तो ये रोजा ना रखे। तो बहरहाल ये कि वो सीरियस वाली बात होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कोई लापरवाही वाली जो एक सूरत हाल होती, जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर वो फीडर पिला के कोई और बैरूनी जराए से बच्चे की खुराक को पूरा कर सकती है, तब भी इस औरत के लिए रोजा रखना जरूरी हो जाएगा। तो बहरहाल ये एक दिमाग में एक चीज रहे। अच्छा, इसी तरह से एक बात और बयान कर दी जाए कि आपने अगर किसी शख्स को पता ही नहीं था कि मैं कजा रोजा मुझ पर है और मैं मुस्ताब रोजे नहीं रख सकता हूं, ये तो उसे ये पता था कि मुझ पर कजा रोजे, लेकिन ये पता नहीं था कि जिस पर कजा रोजे हो मुस्ताब रोजा नहीं रख सकता, तो दिन में किसी वक्त उसको किसी ने बताया कि भाई तुम्हारा तो कजा रोजे ही तुम पर बाकी है, तुमने मुस्ताब रोजा कहाँ रखा हुआ है, तो क्या ये कर सकता है कि अपनी नीयत को कजा रोजे की तरफ पलट दे, ये मुस्ताब रोजा जो अभी इसने रखा हुआ है कि ठीक है मैं मुस्ताब रोजा नहीं कर रहा, मैं अब अपने कजा रोजे की तरफ नीयत को बदल रहा हूं, तो इसका जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, ये अपने मुस्ताब रोजे की नीयत को कजा रोजे की नीयत की तरफ तब्दील नहीं कर सकता। अच्छा, इसी तरह से एक मसला पेश आता है, बहुत ज्यादा बीमार अशखास जो कि अपनी सेहतियाबी से मायूस हो, बहुत से अफराद किस तरह के हर तरह के सवाल आते हैं कि क्या ऐसे अफराद जिनको पता है कि अब मैं कभी सारी जिंदगी अब सेहतियाब नहीं हो सकता, बल्कि मेरी जिंदगी अब इतनी नहीं रही, तो क्या ये अपनी जिंदगी में अपने उन रोजों के कजा करवा सकते हैं किसी और से इजारे पर पैसे वगैरह देके? तो जवाब है कि जी नहीं, इंतकाल के बाद ही सिर्फ ऐसा हो सकता है, अपनी जिंदगी में कोई शख्स अपने किस पैसे देकर किसी और से अपने कजा रोजे नहीं रखवा सकता। देखिए, हर तरह के सवाल होते हैं, तो उसमें एक ये भी सवाल है, बहुत से अफराद ये भी पूछते हैं कि हालत रोजा में, क्योंकि सर है हमारा वो मसलन तेल वगैरह जज्ब कर लेता है, तो क्या हालत रोजा में हम तेल वगैरह सर पे लगा सकते हैं? जवाब है कि जी हाँ, लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, तेल सर में लगाया जा सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे अफराद जो सर में कलर वगैरह लगाते हैं, ये भी पूछते हैं कि हालत रोजा में खिजाब करना है, सर में कोई कलर लगाना, ये जायज़ है? तो जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल जायज़ है, हत्ता के चेहरे पर जो क्रीमें लगाई जाती हैं जो अपने अंदर खाल से अंदर जज्ब भी हो जाती हैं, उनको भी लगाने की इजाजत है। बहुत से अफराद ये पूछते हैं कि जनाब कान में अगर पानी चला जाए नहाते वक्त तो कैसे रोजे पर कोई फर्क पड़ता है? जवाब है कि जी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कान में पानी चला जाए तब भी रोजा बिल्कुल सही रहता है। एक बात और भी दिमाग में रहे कि अगर मुस्तहाबी रोजा रखना, औलाद मुस्तहाबी रोजा रख रही है लेकिन मसलन वालदैन को असीयत पहुंच रही है उनके रोजा रखने से, तो औलाद का मुस्तहाबी रोजा रखना हराम हो जाता है, हराम हो जाता है। तो अच्छा, बाज औकात ये होता है कि उनको ऐसे अगर उन रोजा रख भी लिया तो रोजा उनका गलत हो जाएगा, अगर वालदेन को अजियत पहुंच रही, मसलन उनकी जिस्मानी हालत ऐसी कि वालदेन को अजियत हो रही, फिक्रमंद हुए जा रहे हैं कि इसने रोजा क्यों रख लिया, मुस्ताबी रोजा अभी बीमारी से उठी है, इतनी ज्यादा कमजोर है, गिरी पड़ी जा रही है, चक्कर इसको आते हैं, उनको अजियत पहुंच रही, तो औलाद के लिए फिर मुस्ताबी रोजा रखना जायज नहीं होता, हराम हो जाता है। अच्छा, एक सवाल लोगों ने ये भी अक्सर पूछते हैं कि रोजे में जो कफारों की रकम है उससे क्या हम किसी गरीब की शादी में खाना करवा सकते हैं? मसलन खाना हम करवा रहे हैं, उसके पास खाने के पैसे नहीं, हमने कहा ठीक है हमारे पास बहुत सारे कफारों के पैसे हैं कई सालों के, तो उससे तुम्हारे खाना हो जाएगा शादी, किसी गरीब की शादी का खाना? जवाब है कि जी नहीं, इसकी इजाजत नहीं, किसी गरीब की शादी में कोई खाना वाना इस तरह से नहीं करवाया जा सकता। अच्छा, इसी तरह से अपने किसी वाजिब व नफका रिश्तेदारों को भी, जिनका नफका खुद हम पर वाजिब, किसी का खर्चा हम खुद उठा रहे हो, तो ना उसको कफारे दिए जा सकते हैं, ना फिदिया दिया जा सकता है, और ना ही फितरा दिया जा सकता है। तो अपने वाजिब नफका, यानी जिनका नफका हम पर वाजिब है, जिनको नानो नफका मुहैया करना हम पर वाजिब है, हम उनको अपनी ये वाजिब चीजें नहीं दे सकते, ना कफारे ना फिदिये और ना फितरे। हाँ एक बात और बयान कर दी जाए अभी, क्योंकि उससे पहले रोजा तोड़ने की एक बात आई थी कि इजारे पर अगर कोई शख्स रोजे रख रहा हो, इजारे पर पैसे लिए और रोजा रख रहा हो, तो क्या वो जोहर के बाद अपने इजारे के रोजे को तोड़ सकता है? ये एक दिलचस्प मसला है, क्योंकि आपने इससे पहले सुना था कि जोहर के बाद इजाजत नहीं होती अपने कजा रोजों की, लेकिन इजारे के जरिए जो हमने अपने ऊपर वाजिब किया है रोजा, इसको जोहर के बाद भी जानबूझकर भी तोड़ा जा सकता है। बस एक उस रोजे को रखना पड़ेगा जो हमने मुआहदा किया हुआ है, जाहिर है रोजे रखने का, उसको बाद में किसी दिन पूरा कर दें, लेकिन यह कि इजारे के रोजे को जब चाहें जानबूझकर भी तोड़ सकते हैं, जोहर के बाद भी तोड़ने की इजाजत है। बहुत से रोजेदार अफराद ऐसे होते हैं जिनके जिनके मुंह से खून आने लगता है हालत रोजाना, तो ठीक है अब उस खून को तो जाहिर पी नहीं सकते, उसको थूक देना जो है वाजिब है, बस ये हलक से नीचे वो ना उतरे, लेकिन इससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि वो जब टूथब्रश करते हैं हालत रोजा में तो मुंह से हल्का सा खून निकल आता है, लेकिन इतना मामूली सा कि हल्का सा में जायका महसूस हो रहा है उसका, लेकिन वो हमारे थूक में घुल मिलकर खत्म हो रहा है, तो ये जायज है। इसको अगर निगल भी लें तो सही, लेकिन बहरहाल अगर एहतियात करना चाहें तो ज्यादा अच्छा है कि उसको भी फेंक दें, लेकिन अगर वो अपनी हैसियत और अपनी शक्ल ही खत्म करके रख दे, मुस्तहलिक हो जाए, हलाक हो जाए, खत्म हो जाए वो खून, कहीं हमारे मुंह में नजर नहीं आ रहा हो, थूक में घुल मिल के इतना मामूली सा था, तो उसको तो निगलने की भी इजाजत है, क्योंकि वो उसकी अब हैसियत ही खत्म हो गई, थूक में घुल मिल के खत्म हो गया, लेकिन जो उससे पहले तस्वीर में आपने देखा कि वो ज्यादा था, तो फिर उसको तो थूकना ही वाजिब होगा और उसको निगलने की इजाजत नहीं मिलेगी। खवातीन एक चीज मसला और पूछती हैं, वो है खवातीन अपने निस्वानी चेकअप के एतबार से, एक मसला खवातीन का आता है कि किसी गायनिकोलॉजिस्ट वगैरह को दिखाना है और वो निस्वानी चेकअप करेगी तो हालत रोजा में उसको करवाने की भी इजाजत है, उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इसी तरीके से एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि कोई खातून बीमार है मसलन और वो रोजा नहीं रख सकती, और बाज़ औक़ात उसकी बीमारी अगले साल तक तूल खींच जाती है और फिदिया वगैरह वाजिब होता है, लेकिन औरतें क्योंकि आमतौर पर जाहिर है कमाती नहीं है, अपने शौहरों ही के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं आम हालात में, वैसे अलग जहां पे खुद मुख्तार हैं वो अलग भी मामलात होते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर तो क्या इनके शौहरों पर वाजिब है कि इन औरतों के फिदिया निकालें अपनी बीवियों के? यानी क्या शौहर पर वाजिब है कि अपनी बीवी का फिदिया निकाले जो उसको अगले साल तक उसकी बीमारी तूल खींच गई? तो इसका जवाब ये कि शौहर पर बीवी का फिदिया निकालना वाजिब नहीं, और उसके पास अपना भी कोई पैसा नहीं है तो फिलहाल तो उस पर से माफ हो जाएगा मामला, जब भी कभी इसकी अपनी जाती इस्तेतात होगी औरत की जो बीमार है जख्मी है कोई भी ऐसी चीज कि अगले साल तक ये रोजा रखने के भी काबिल नहीं, हाँ अगले साल तक रोजा रख लेगी तो फिर तो फिदिया भी नहीं होगा इसके ऊपर, बीमार जो हो गई थी इस साल, अगले साल के दरमियान इसको अपने रोजे की कजा कर लेना, लेकिन अगर बीमारी अगले साल तक तूल खींच गई तो फिदिया इसके ऊपर वाजिब हो जाएगा, तो फिदिया जो है वो ये अपने अपने पैसों ही से निकालेगी, शौहर के ऊपर वाजिब नहीं होगा कि भाई और चीजों की जिम्मेदारी भी शौहर उठा रहे तो वो फिदियों और कफारों की जिम्मेदारी भी इसकी उठाए, नहीं ये शौहर की जिम्मेदारी नहीं। हाँ शौहर देना चाहे इसका उतारना चाहे वो एक अलग मसला है, लेकिन वाजिबा तो हराम की बात कर रहे हैं, और इसके ऊपर अगर अपनी जाती इस्तेतात नहीं है तो इस पर फिलहाल साकित भी हो जाएगा, फिर जब कभी इस्तेतात आएगी तो उसको वो फिदिया देना पड़ेगा। अच्छा जो अभी हमने कहा कि कजा रोजे उसको रखने पड़ेंगे अपने जो जिसने जानबूझकर रोजा छोड़ा और कफारे के रोजे भी रखना होते हैं, तो क्या इसमें कोई तकद्दुम और ताखुर है कि पहले ये कजा रोजे रखे फिर कफारे के रखे, या इसका उल्टा भी कर सकता? तो जवाब है कि जी हां बिल्कुल इजाजत है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, चाहे पहले कजा रख लें फिर कफारे के रखें, चाहे पहले कफारे के रख लें फिर कजा रख लें, दोनों तरह से इसकी इजाजत है। अच्छा अब एक चीज और भी है, एक सवाल है कि अगर किसी शख्स पर रमजान का कोई कजा रोजा है तो क्या वो नजर का रोजा रख सकता है? ये एक सवाल, यानी कोई नजर करके अपने ऊपर वाजिब कर ले, इस पर कजा रमजानों के पिछले रमजानों के कजा रोजे भी इसके ऊपर है, क्या ये नजर करके अपने ऊपर कोई और रोजा वाजिब कर सकता है? मेरा फला काम हो गया तो मैं वो रोजा रखूंगी, जबकि तुम्हारे ऊपर अपने पिछले रमजानों के कजा रोजे भी हैं। तो आगा सिस्तानी और इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को नजर नहीं करनी चाहिए रोजे की, जिस पर अपने कजा रमजान के रोजे मौजूद हों उसको नजर नहीं करनी चाहिए नजर करके अपने ऊपर रोजा वाजिब करने की। अलबत्ता जो और मराजी हैं जैसे आयतुल्ला वहीद खुरासानी आजकल वो इजाजत इसकी देते हैं। अच्छा, कोई औरत, कोई बल्कि बीवी अपने शौहर की इजाजत के बगैर रोजे की नजर कर सकती है? मुस्ताब रोजे, वाजिब रोजे में तो शौहर की इजाजत नहीं चाहिए, यानी वो नजर कर रही है तो उसको क्या शौहर से अपने पूछना पड़ेगा कि क्या मैं रोजा रख लूं? तो इमाम खुमैनी और आका खामनई फरमाते हैं उसकी ये नजर बातिल है, अगर शौहर से उसने इजाजत नहीं ली। शौहर से इजाजत लेना चाहिए नजर करके अपने ऊपर रोजा वाजिब करने की, ये अलग से एक मसला। और आगा खोई हैं जैसे या मसलन आका सिस्तानी हैं, वो ये फरमाते हैं कि अगर मनाफी हक़ शौहर ना हो, यानी शौहर का अगर इज़दवाजी हक जाया ना होता हो तो वो रख सकती है, और अगर हक जाया हो रहा है तो फिर नहीं रख सकती। अच्छा, फिर उसके बाद एक बात और बयान कर दी जाए कि देखिए, क्योंकि हम आज मुतफर्रिक बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग मसले, अगली दफा जरा तरतीब के साथ मसले आएंगे, क्योंकि फिदिये के मसले आएंगे, कफारे के मसले आएंगे और बहुत सारे मसले इस तरह के आएंगे, फितरे के मसले आएंगे। ये कोड़ा क्यों दिखाया जा रहा है आपको? वो इस वजह से कि रोजा अमदन रोजा छोड़ने की सजा में हुकूमत इस्लामी में ताजीर, इसके ऊपर इसको ताजीर के तौर पर एक सजा दी जाती, यानी अपने जो शख्स रोजे अब तक नहीं रख रहा, जानबूझकर रोजा छोड़ रहा है और आके में शरा को पता चल जाए कि रोजा छोड़ रहा है। देखिए, और किसी चीज अहकामात में इतनी सख्ती नहीं दिखाई देती, लेकिन रोजा अगर कोई इस शख्स इस अंदाज से छोड़ रहा है तो उसको ताजीर की जाएगी, यानी उसको कजा और कफारा तो अदा करना ही, कजा भी रखना है, कफारा भी करना रखना है। पहली ताजीर यह कि इसको 25 कोड़े लगाए जाएंगे, तुमने क्यों रोजा जानबूझकर छोड़ा, रोजा रख ले तो सही, दूसरी दफा इसने फिर रोजा नहीं रखा, अब इसको 25 ताजियाने मजीद लगाए जाएंगे। अच्छा, ताजीर में यह होता है कि हाकिम इशारा कम और ज्यादा कर सकता है उसकी हालत को देखते हुए, मोटा ताजा अट्टा कट्टा है तो कहेगा ठीक है 35-40 भी लगा दो, यानी हाकिम इशारा को इजाजत, लेकिन एक उसकी जिस्मानी हालत को देखते हुए, लेकिन इतना नाफरमान। तो अब देखिए, मैं फिकही मसला बता रहा हूं, अगर चाहे काबिल अमल अब तक नहीं होता है आजकल, तो हाकिम इशारा को तो खैर इस बात की इजाजत है कि ताजीरन कम और ज्यादा कोड़े कर सकता है, तीसरी दफा भी उसने अगर तौबा नहीं की, बाज नहीं आया और जानबूझकर इसने अपने रोजों को छोड़ा, तो फिर इस्लामी हुक्म यह है कि यह कत्ल किया जाएगा। लेकिन बहरहाल हुकूमत इस्लामी को सिर्फ ना सिर्फ किसी शख्स को इजाजत नहीं है, सिर्फ हुकूमत इस्लामी को, जिसको पता चल जाए कि इस शख्स ने बिला उजर शरी जानबूझकर जो है रोजे को छोड़ा, और जहां कवानीन इस्लाम का निफाज इस तरीके का हो और वहां पे इंप्लीमेंट हो रही हो ये चीजें, हाकिम शरा की हुकूमत हो और ये यकीनी जराए से इत्तला मिल जाए, तो फिर ये एक इस्लामी हुक्म वहां पर आ जाता है। अच्छा, अब एक मसला, बस आखिरी मसला ये, इसके बाद तो इतना वक्त भी हमारे पास नहीं बचेगा। अगर कोई शख्स ये जो 60 रोजे रखने का मसला था कि जो शख्स जिसने अपने जानबूझकर रोजे छोड़े हों वो 60 रोजे रखे या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, अब अगर किसी शख्स में 60 रोजे रखने की हिम्मत नहीं, भाई हमसे नहीं रखे जाते, रखने होते तो हम एक एक ही ना रख लेते उसके अंदर के, एक के बदले 60 रोजे रख रहे हैं, और ना इतने पैसे हैं कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला सके, तो सबसे पहली बात तो उलमा यही कहते हैं कि जब आप इतने कमजोर थे तो आपको अल्लाह मियां से टक्कर लेने की क्या जरूरत थी, यानी ना आप 60 रोजे रख सकते हैं ना 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हैं, और अल्लाह की मुखालफत करके उससे जो है टक्कर लेने चले हैं उसके कानून की मुखालफत करके। तो चले बहरहाल, तो बहरहाल ना 60 रोजे रख सकते हो ना 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो, तो फिर बस वही है जो इससे पहले बयान हुआ था कि अपनी हैसियत के मुताबिक सदका दे दें, अपनी हैसियत के मुताबिक, और एक इस्तगफार कर लें सच्चे दिल से, तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन बाद में कभी अगर अदायगी आप इन चीजों की कर सकेंगे, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने के आपके पास पैसे आ गए या 60 मिस्कीनों या 60 रोजे रखने की हिम्मत आपके अंदर पैदा हो गई, तो आपको रोजे रखने पड़ेंगे, मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं कर पाते तो तमाम तो आयतुल्ला खामनई खास तौर पर और आयतुल्ला नासिर वकारिम शिराजी भी इसके अंदर शामिल है, फरमाते हैं कि फिर उस पर से तकलीफ साकित है और कोई कफारा वगैरह भी आइंदा जिंदगी में उस पर लाजिम नहीं होगा। उलमा ज्यादातर उलमा तो फरमाते हैं कि नहीं, उस पर दोबारा वो चीजें करनी पड़ेंगी। अगर उसमें हैसियत आ गई जिस्मानी तौर पर या हैसियत आ गई खाना खिलाने की, तो खाना खिलाएगा या रोजे रखेगा। लेकिन आयतुल्ला खामना ये फरमाते हैं कि नहीं, अगर अब इसी वक्त का मसला है, अगर ये अभी नहीं रख पा रहा और अभी इस पर से इसके पास पैसे नहीं है, जिस्मानी सेहत नहीं है, तो इस पर से तकलीफ शरई साकित हो जाएगी और कफारे का दोबारा इसके ऊपर आना लाजिम नहीं होगा, वो चीजें माफ हो जाएंगी। तो बहरहाल आज की हद तक गुफ्तगु यहां पर आज हम रोक रहे हैं। सवालात का एक अंबार यहां पर मुझे आप लोगों का माशाल्लाह नजर आ रहा है, लेकिन वाकई रोजे के मसले हैं भी इतने ज्यादा। जैसे मैंने कहा कि अभी पिछले हमने बयान की, आज अगली क्लासों में और उसके बाद भी शायद 8-9 घंटे के फिर मसले और रह जाएं, तो वह आप अपने तौर पर अब देखिए। अभी ये हमेशा एक बात और दिमाग में रख लें कि जब कोई भी तकरीर करने वाला जब कंक्लूड कर रहा होता है, तो उसके आखिरी वाले जो बातें हैं वो भी तवज्जो के साथ सुननी चाहिए। और इससे क्या होता है, हो सकता है कोई अहम बात मैं बयान करने जा रहा हूं तो वो मेरा भी अब दिल नहीं चाहेगा उसको बयान करना। तो अब आप कोशिश ये करें कि किसी भी अदबार से तौजीउल मसाइल का मुतालिया करें, या मदरसे की तरफ से, अभी मुझे पता नहीं है, मैं अभी जाके मालूम करूंगा कि एक हमने खास एक आप लोगों को वो दिया था एक सवालनामा कि आपके रमजान और रोजे की मालूमात कितनी है, उसको आप भर, उसको अगर आप वाकई किताबों से निकाल कर उलमा से पूछ पूछ के अगर इसको आप भरें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और किताबचों में खासतौर पर जो हमारे डिस्टेंस लर्निंग के बुकलेट्स हैं उसके अंदर रोजे के जो अहकाम हैं, रोजे के अहकाम, वो तकरीबन 350-400 फिकही मसले सिर्फ छोटे छोटे सवाल ट्रू और फॉल्स की सूरत में जो है वो आप 300-400 मसले ऐसे ही वर्क गर्दानी करते हुए अगर आप वो किताबचे खरीद लें या आपके पास मौजूद हो, तो उसमें रोजे वाले सेक्शन को निकाल के 10-10 सवाल तकरीबन हर किताबचे के अंदर हैं, तो अच्छे खासे सवाल आपके कवर हो जाएंगे और आपको बहुत सी मालूमात, नई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ इस की हद तक नहीं कि यहां पर क्योंकि बयान नहीं हुए तो जाहिर है हम क्या करते, नहीं, अभी भी उलमा के कैसेट्स मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, तौजील मसाइल है, इस्तफ्तात की किताबें हैं जो उर्दू में हैं, वो आप भी आप लेकर पढ़ सकती हैं।